प्रिय भक्तगण, बहनों, भाइयों, बालक बालिकाओं, संघ के सभी सदस्य तथा सभी भगवान भक्तों, कल हमने गीता के 3 अध्याय के 32 श्लोक तक किया था, आज हम 33 श्लोक करते हैं, 33 श्लोक करते हैं, 32 श्लोक हमें आज करने हैं। पिछले श्लोकों में पढ़ा जाना कि क्या जाना, आप सबको पता ही होगा, क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ हम आते हैं। यथा प्रकाश यते का कृष्ण लोक रवि क्षेत्र क्षेत्र तथा कृष्ण प्रकाश यति भारत भक्त वंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे क्षेत्र आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। व्याख्या, जैसे सूर्य के प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती है, सूर्य के प्रकाश में कोई देर का पाठ करता है तो शिकार करता है, परंतु सूर्य को उन क्रियाओं का न पुण्य लगता है न पाप, कारण कि सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है न भोक्ता ही बनता है। इसी प्रकार आत्मा सर्वव्यापी सत्ता, संपूर्ण शरीरों की सत्ता, शरीरों को सत्ता स्फूर्ति तो देता है पर वास्तव में वह न कुछ करता है न ही लिप्त होता है। बिल्कुल यहाँ स्पष्ट करते हैं भगवान कि आत्मा न करती न लिप्त है, न कुछ करती है न इसमें लिपायमान होती है। संसार में हम ही संसार से जुड़ते हैं और फिर संसार से जुड़कर कभी कर्ता का भोक्ता का अनुमान करते हैं। करने की जिम्मेदारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है, जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो बिना सामग्री रंग आदि के वह चित्र नहीं बना सकता, ऐसे ही पुरुष चेतन व्यक्ति जड़ शरीर आदि की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। ऐसे भी व्याख्या करते हैं भगवान कि जो चेतन है उसको भी कुछ सामग्री चाहिए, सहायक इंजीनियर चाहिए, वो कुछ कर सकता है, इसलिए कुछ न कुछ करने में शरीर का उपयोग है। तो शरीर क्या है, वो उसका साधन है, चेतन का क्रिया करने का साधन हमारा ये शरीर चेतन का एक इंस्ट्रूमेंट बनता है। ये कहा गया है, द इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड, यदि हम कुछ भी न करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग है, शरीर भी लिया, खाते हैं, सोते हैं, सब क्रियाएं करते हैं, लेकिन कुछ और नहीं करना चाहते हैं तो शरीर जो है यूजफुल नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है, कुछ भी उपयोग नहीं है। यदि हम कुछ भी देखना ना चाहें तो आंखें हमारे किस काम आएगी, कुछ भी सुनना ना चाहें तो काम क्यों, वो सुनने के लिए भी है, आंखें देखने के लिए भी, स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है, जो मोटे मोटे काम करना तो शरीर से होते हैं, और चिंतन मनन ध्यान आदि करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है। इसलिए जिन्हें हमने अध्ययन में अवश्य सुना होगा कि एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म है, एक कारण है, तो स्थूल तो मोटे मोटे काम है, मकान बनवाना बनाना या जो भी काम मोटे मोटे होते हैं वो स्थूल करते हैं, और जब चिंतन करना हो, मनन करना हो, ध्यान लगाना हो तो हमें स्थूल शरीर को बैठा देना पड़ता है, वो सूक्ष्म शरीर उस वक्त काम आता है, और जब हम बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं तो हमें कारण शरीर काम होता है, तीनों शरीरों से हम काम लेते हैं, शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती है। मतलब शरीर से जो कुछ हम काम करते हैं, किसी का भला कर दिया, खाना बना दिया, जो भी काम करते हैं वो संसार के लिए है। हमारा स्वरूप चिन्ह में सत्ता मात्र है और हम क्या हैं, प्रकाश में आत्मा हैं, अतः उसके लिए तीनों शरीरों की क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। मतलब आत्मा के लिए तो तीनों शरीरों की आवश्यकता नहीं है, बहुत अपने में न करोति न लिप्यते है। जिनमें सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि ये सिद्धांत है कि जो चेतन है जिनमें है वो परिपूर्ण पूर्ण मदा पूर्ण मदन पूर्ण दुख्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। उसको तो किसी की आवश्यकता नहीं, तो हमेशा पूर्ण है, दो हो नहीं आती, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो सकती ही नहीं। सत्ता कौन है? हम चेतन, वो एक ही है, चाहे वो भारत में चाहे वो दूसरे देशों में पूरे ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स में एक ही चेतन है। इस प्रकार ना तो क्रिया के साथ संबंध कर्तृत्व हो, न अप्राप्त वस्तु को स्वयं कामना हो, न करने की भावना हो, न कोई इच्छा हो, और न प्राप्त वस्तु को स्वयं ममता है, जो मिल गया उसके साथ में ममता भी नहीं करनी, तो क्या होगा? प्रत्येक साथ तादात्म्य नहीं रहेगा, अटैचमेंट नहीं होगी। पृथ्वी से तादात्म्य न रहने पर प्रतिमा क्रिया तो रहती है, पर कोई कर्ता भोगता नहीं रहता। जब हम उससे जोड़ते ही नहीं अपने आप को पृथ्वी से, तो न हम किसी काम के करता है और मैं इसको भोगने वाले। श्लोक 34, क्षेत्र क्षेत्र यज्ञ ज्ञान चक्षुषा भूत प्रति मोक्षम चाहे गृहयांति ते परम। कहते हैं इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कारण सहित प्रकृति के स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ये समझते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है बीच में जो है वो चिन्मय आत्मा है, और कुदरत से अपने आप को अलग मानते हैं, वो परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। ये अच्छा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। विवेक क्या है? कि हमें ये पता होना चाहिए क्षेत्र क्या है, और क्षेत्रज्ञ तो आपको पता लग ही गया क्षेत्र क्या है, शरीर, और क्षेत्रज्ञ क्या है, आत्मा। जो साधक साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक से ज्ञान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य को स्वयं से स्वतः अलग अनुभव करते हैं, यहाँ प्रकृति में होगा अहंकार को सारा सोचे दिमाग लगाए, जो सेव लगने और लगने हैं, जो भी सुख जाने वो सुख जाने हैं, फिर क्यों हम उसमें अपने आप को जोड़ दें। बेचिन में परमात्मा अच्छा अनुभव कर लेते हैं, बेचिन में परमात्मा जो ये समझ लेते हैं कि मैं तो चिन्ह में हूँ और प्रकृति अलग है, तो फिर ऐसे मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी दृष्टि में चिन्ह में तत्व का स्वयं कुछ नहीं है, सिया राम में सब जग जाने करूँ प्रणाम जोड़ी दुग पानी, सब कुछ चिन्ह में ही है। संपूर्ण ज्ञान क्षेत्र अर्थात जड़ विभाग में होती है, क्षेत्र अर्थात चेतन विभाग में कभी भी किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। स्थूल क्षेत्र से होने वाली क्रियाएं आप समझ गए, स्थूल शरीर ये शरीर है और उसके क्या क्या काम करता है, चलता है, फिरता है, खाता है, सोता है ना। सूक्ष्म क्षेत्र से होने वाले चिंतन, सूक्ष्म शरीर क्या करता है, ध्यान करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, और काम शुरू क्या करता है, वो मनुष्य को स्थिर बना देता है और समाधि में चला जाता है मनुष्य। ये सभी जड़ विभाग में ही है, फिर भी ये जड़ विभाग में कामना ममता हमता आदि संपूर्ण विकार भी जड़ विभाग में ही है, संपूर्ण पाप ताप भी जड़ विभाग में ही है, राशि तथा पेशी में दोनों जड़ विभाग में है, पर्व राशि और विषाण में दोनों चेतन विभाग में है, बाकी सारे किसमें होता है जड़ में। लेकिन भगवान के आश्रय में चले जाना और शांति प्राप्त करना ये चेतन विभाग में, चेतन मतलब आत्मा के विभाग में, परमात्मा के विभाग में। जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान के अग्नि से संपूर्ण पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद भगवत गीतासु सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। तो श्रीमद् भगवद गीता में गीत के माध्यम से प्रत्येक मानव को भगवान क्या शिक्षा देते हैं। तो तीन अध्याय में हमने शरीर और आत्मा के संबंध में बहुत कुछ जाना समझा। कल हम चतुर्दश अध्याय कहेंगे। अब मैं स्वामी जी की द्वारा लिखित जो बुकलेट है उसके विषय में चलूंगा। आप सब ने ध्यान दिया कि हमारे इस शरीर में, जैसा कि स्वामी जी ने रामलाल जी को बताया, उन्होंने एक किताब लिख दी और उसमें बताया कि हमारे शरीर में कितने चक्कर हैं, कुंडली है, कुंडली कैसे जागृत होती है और कौन कौन से चक्कर है, है ना? तो ये हमें अच्छे से पढ़ा सुना और जान लिया। अगर आप चाहते हैं कि इसको आज फिर दोहराऊं तो थोड़ा सा फिर दोहरा देती हूँ कि हम देखते हैं कि ये संसार पांच तत्वों से बना है, जिसको इंग्लिश में फाइव एलिमेंट्स कहते हैं। उनके नाम है पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। ये पांच तत्व हैं सब मानते हैं साइंटिस्ट भी और विद्वान भी। अब हम देखते हैं कि जो मूलाधार है, जो मूल है, वहाँ वो कुंडली बैठी है, सोई है, वो उसको जागृति नहीं है। और मूलाधार में पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व लोभ का परिचायक है। पृथ्वी में ही सब प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते हैं। जब मनुष्य पृथ्वी तत्व से जुड़कर लोभ में लालच में फंस जाता है तो कभी भी कुंडली जागृत नहीं होती है। लेकिन जो साधक मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान करता है तथा प्रैक्टिकली लोभ को छोड़ देता है, लालच को छोड़ देता है, केवल भगवान का ही लालच करता है, तो उसकी कुंडली अवश्य जागृत होने लगती है, उसमें हलचल आती है। तो दूसरा कौन था? दूसरा चक्कर था स्वाधिष्ठान। से आगे हम स्वाधिष्ठान में जाते हैं। ये जल तत्व से संबंधित है और जल तत्व ब्लड से संबंधित है, खून से संबंधित है और ये मुंह पैदा करता है कि ये मेरा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी, जो भी है, भाई है, बंधु है, भतीजे, जो भी आगे तक जिनसे संबंध है उनको जोड़ता रहता है और उससे आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से क्या होता है कि मोह हो जाता है। मोह में क्या होता है कि ये सेकंड दूसरा जो ये स्वाधिष्ठान चक्कर ये जागृत नहीं होता, इस पर ध्यान भी लगाते हैं, पर जब तक हम ये मोह नहीं छोड़ते हैं तब तक ये दूसरा चक्कर शालीन पैदा होती है, यहाँ कुंडली आएगी और वो जागृत होगा ना। अब आइए, ये तभी जागृत होता है जबकि हम समस्त प्रकार के अटैचमेंट को मोह को छोड़ देते हैं। अब तीसरा, ये तीसरा मणिपुर नाभि चक्र। नाभि चक्र के में क्या है? अग्नि। ये अग्नि तत्व से संबंधित है, अग्नि जला देती है, अग्नि का कार्य जलाना, तो ये क्रोध से संबंधित है ये तत्व। और जब हम मणिपुर में पहुंच जाते हैं हमारी कुंडली जागृत होकर के, तो हमें थोड़े थोड़े आत्मा के दर्शन होने लगते हैं। लेकिन जब तक हम क्रोध के वश में हैं, बात बात पर हमें क्रोध आता है, भले हम दिखाते नहीं है, मन ही मन कुड़ते रहते हैं, उसने ऐसा बोला, ऐसा किया और मुझे बहुत गुस्सा आ गया, तो हम इस तत्व को नहीं जीत सकते हैं और ना ही हम आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये तत्व भी जीत लिया तो यहाँ पर हमें पूर्ण आत्मा के दर्शन कभी कभी हो जाते हैं। अब तो तीन हो गए ना, अब चौथा है अनाहद जो हृदय के पास है, और इसका संग वायु से है। वायु का काम है उड़ना, भागना, उड़ाना, चीजों से उधर पत्ते उड़ाना। कभी कभी झंझावात इतना आता है कि लोगों के घर में उड़ जाते हैं। तो ये मन से संबंधित होने के कारण ये बड़ा भारी तेज है, लेकिन अगर हम मन को स्थिर कर लें तो हम अनाहत तत्व को भी जीत लेते हैं वो ध्यान के द्वारा, और हमें संपूर्ण रूप से शांति मिलती है और परमात्मा आत्मा के दर्शन मिलती है। अब इसके आगे विशुद्ध विशुद्ध चित्त का संबंध है आकाश से, आकाश का संबंध है ईगो से, अहंकार से। तो जब तक हम अहंकार हैं, हमें ईगो है, मैं और मेरा खत्म नहीं होता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर सकता हूँ, हर जगह मैं ले आता है, ये चक्कर तक हमारी कुंडली शक्ति नहीं आती है और हम आम आदमी बन जाते हैं। लेकिन जब हम इस अहम को जीत लेते हैं, मैंने क्या किया, सब करने वाला भगवान बोल दो, आत्मा बोल दो, मैंने ये दूसरे को बोल दो, यही सब कुछ करता है, मैं तो बैठा रहता है, तो क्या होगा कि अहम को जीत लेंगे। सब कुछ करना है, करते भी हैं, लेकिन मैं नहीं आता शब्द, तो फिर हमने विशुद्ध चक्र भी जीत लिया। ये पांच चक्कर हम जीत लेते हैं। अब हम आते हैं आज्ञा चक्कर में। आज्ञा चक्कर दो भुवों के बीच में है, और इसको थर्ड आई कहते हैं। लॉर्ड शिवा ने इसको खोल दिया था अपनी तीसरी आई को, तीसरी अंक को, तो ये अंक खुल सकती है ध्यान से और प्राणायाम से, और कुंडली शक्ति दुनिया से जागृत होती है। मानव जो है वो अपनी आत्मा के पूर्ण दर्शन करता है और परमात्मा में मिला देता है। अब नेक्स्ट सातवां है सहस्त्रधार। इस चक्कर में अनेकों लोटस लगे हुए, लोटस के पेटल्स लगे हुए अनेकों हजारों, उनमें जो कुंडली गुजरती है तो एक नाम से हमारा मिलन उस चेतन सत्ता से हो जाता है, और हम भी तुम्हें जाना तो तुम्हें हो जाई हो जाते हैं। यानी भगवान से मिलते ही हम भी भगवान ही बन जाते हैं। जैसे एक छोटी बूंद पानी की समुद्र में गिरती है तो उसको कौन कहता है, बूंद है, कहते हैं सागर है, ओशन है। ऐसे जब हम उससे मिल जाएंगे, हमारी अपनी सत्ता तो नहीं होगी, हमारा नाम नहीं होगा, घर नहीं होगा, लेकिन हम ओशन अवश्य कहलाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा आपका रिविजन करवाया है, इस रिविजन को आप डेली करते हैं और प्रयत्न करें हम थोड़ी देर के लिए सुखासन सिद्धासन करें और मूलाधार से लेकर सहस्त्राधार तक हम अपने आप को ले जाएं। प्रैक्टिकली जो हमने कंडीशन बताई, कहते हैं बताओ कि क्या छोड़ना है, क्या क्या छोड़ना है, वो छूट जाएगा तो ये घर बैठे ही हमें कुंडली शक्ति जागृत हो सकती है और साथ ही परमात्मा से भी हम मिल सकते हैं। इसलिए संत लोग ऋषि मुनि घर छोड़कर जंगलों में रहते थे कि घर में तो कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है, जितने भी हमने आपको बताए, न लोभ न मोह और न क्रोध और न ही मन का भटकना है और न ही अहंकार छूटता है, कहीं न कहीं तो आ ही जाता है। तो ऋषि मुनि ने पहले एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने देखा था एक्सपेरिमेंट करके, अगर हमें परमात्मा से मिलना है तो हमें ये सब कुछ छोड़ना होगा, इसलिए वो एकांत में चले जाते थे। लेकिन ये युग हमारा युग जो है ये एकांत में जाने का भी नहीं, कहाँ जाए, है ना। महावीर के ऋषि मुनि कहते हिमालय के वहाँ जीते रहते हैं, लेकिन हम और आप सब तो नहीं जा सकते हैं, तो हमें अगर इसमें दिलचस्पी है तो हमने ज्ञान को तो अर्जित कर लिया, ये ज्ञान है, दिस इज द नॉलेज, कि हमने पढ़ा सुना और उसको रट भी लिया। लेकिन अब हमने घर बैठ कर ही राजा जनक की भांति ये लोग वो क्रोध मन का भटकाओ हंकार सब छोड़ना होगा और छूट जाता है, ऐसी बात नहीं है। जब हम शाम कर्म योग की साधना करते हैं तो ये स्वयं अपने आप छूटने लगता है और छूट जाता है। जब ये छूट जाएगा तो हमें घर में बैठी एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी, तो और वो दिव्य आनंद जो है वो जब हमें मिल गया तो फिर और क्या हमें चाहिए, हमें तो दिव्य आनंद ही चाहिए। फिर तो हमारे दोनों हाथों में क्या होगा, लड्डू, कर्म का भी लड्डू और ज्ञान का लड्डू होगा। इसलिए भक्तजनों प्रयत्न करो कि हम कुंडली योग को पढ़े, कोशिश करें, लेकिन उसको इतना स्ट्रेस ना दे कि दो दो घंटे बैठे रहकर आदमी पागल भी हो जाता है। बहुत से लोग कुंडली जागृत करते दफा पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो सहज नहीं करते हैं, वो स्ट्रेस डालते हैं अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे, है ना। हमें तो सहज ही जीना है, सहज समाधि बहुत अच्छी है, सब सीखी है, तो इसलिए पढ़ा भी मैंने, आपको पढ़ाया भी, आपने भी जाना, ठीक है। लेकिन इस पर इतना स्ट्रेस ना दे कि कल को आप बोले माता जी मन तो घबराता है, शरीर में चक्कर आता है, है ना, उल्टी आती है, तो इतना ज्यादा इसके पीछे ना पढ़ेंगे। एक फोन वाले से एक आपके लिए, और कभी कभी अगर थोड़ा समय मिले तो उनका ध्यान कर लो, और इलेक्ट्रिकली जो छोड़ने वाली बातें हैं वो धीरे धीरे छोड़ते जाओ, थोड़ा सा मोह त्यागो, थोड़ा सा लोभ त्यागो, है ना। अब लोभ कैसे त्यागा जाता है, मोह कैसे त्यागा जाता है, ये तो जिसकी जैसी परिस्थिति होगी। जैसे मैं एक आपको सूत्र तो बता सकती हूँ, लेकिन वो सूत्र हो सकता है सब पर ठीक ना बैठे। किसी के पास दो पैसे है और कोई मांगने वाला आता है तो उसको बड़ी आवश्यकता है, तो मुंह छोड़कर दो पैसे दे देते हैं, पैसे मिनट लाल छोड़ के, तो फिर वो निष्काम सेवा बन जाती है, उसमें बहुत शांति मिलती है। इस तरह धीरे धीरे लोभ मोह क्रोध कितना भी कोई नुकसान कर दे, हम शांत बने हैं, कोई हमें कितनी भी गाली दे दे, जैसे भगवान कृष्ण को हम देखते हैं, राधा कृष्ण सीरियल देखो आप, कृष्ण भगवान हमेशा शांत बने रहते हैं, है ना। शिशुपाल थे गलतियाँ गिनते, उनको कहा था बुआ को कि बुआ जब 100 गलतियाँ हो जाएगी तो मैं इसका सिर काट दूंगा, लेकिन 100 तक वो बड़े सहज बने। उन्होंने शिशुपाल की गालियाँ सुनी पर जब वो सुने आया तो नहीं उसका सिर काटा। इस तरह हमें गीता, श्रीमद भगवत गीता या दूसरे जो अन्य ग्रंथ है उनसे बहुत कुछ लेना है, उसे लेकर अपनी झोली में उसको संभाल के रखना है, और जब जब समय मिले तब तब कोशिश करनी है कि कभी आसक्ति हो और कभी लोभ, कभी क्रोध, है ना, और कभी अहंकार भी आता है, देखो मैंने इतने इतना दान दिया, कोई देख सकता है इतना दान, ये अहंकार हो गया। दान देने के बाद कभी याद भी ना आए कि हमने दान दिया है, तो वो हो गया कि हमने अहम छूट लिया। तो अब मैं आपको थोड़ा और पढ़ा देती हूँ कि स्वामी जी टोल्ड मी, रामलाल जी लिखते हैं कि स्वामी जी ने जब ये सब कुछ स्वामी जी ने सारे चक्कर बता दिए, अब मैं फिर से थोड़ा सा आरम्भ करती हूँ। मैं कुंडली एक इज हेयर द इंडिविजुअल बिकम्स जीवन मुक्ता, कहाँ पहुँचती है, आगे चक्र में, द लास्ट चक्र इज द बाल प्लक्स द सहसराला द शून्य चक्र विच इज रिप्रेजेंटेड बाई 1000 पेटल्स लोटस अंडर द स्कल, दिस इज द प्लेस ऑफ द ऑलमाइटी, इट कुंडली एंटर द प्लक्स इज द योगी एंड ऑलमाइटी बिकम वन एंड द सेम थिंग मर्ज into each other as the water drops merges into the great ocean and no birth, no coming back is possible. That is the stage of samadhi. Ramlal ji ne likha, Swami ji told me, that if we can keep away from all the desires, which are simply the bondages, we can realize the life of Atma. If we give up our ego and think that the consciousness in the body is the same as cosmic consciousness, we can be one with the Almighty, enjoying the same privileges which the Almighty enjoys. If the globe wants to become as powerful as the ocean, it has only to lose its identity and merge with the ocean. Then the globe becomes the ocean itself, having the same power and force as the ocean. All our worldly desires are like the veil which hides the life of Atma from us. My discussions with Swamiji continued off and on. In the meanwhile, the construction work in Mahadevi Tirtha progressed. The leaves and bones, two more caves were discovered, and temple of Lord Shiva was made there. Work on Yathinivas was also started. People and devotees continued to gather around Swamiji, and more people came to visit the place. In my heart of hearts, I had a keen desire to know how the miracles take place. But every time I asked my question, he remained unanswered. Sometimes he talked on, talked in symbolizing, but I could not understand. So, Gangaji let me hear a day gehrai mein, ek ichcha thi ki main jaanu ये मिरेकल चमत्कार होते कैसे हैं। लेकिन हर में जब मैं उनसे पूछता स्वामी जी महाराज जी से, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं देता। मैं अगर कभी वो बोलते भी बताते भी तो कोई सिंबल दे देते, तो मैं पसंद नहीं आती। द पास ओन बट माई आर्डेंट विश टू नो द सीक्रेट इन मोर स्टोर ने बीत गया, लेकिन मेरी जो इच्छा थी मैं ये चमत्कार है, इनका सीक्रेट, इनका ढेर जानू। ये लोग करते कैसे बड़े बड़े चमत्कार, होते कैसे? आफ्टर फ्यू मंथ्स अगेन ड्यू हैव अ टॉक्स, आई आस्क स्वामी जी द सेम ओल्ड क्वेश्चन, हाउ द मिरेकल्स टेक प्लेस। दिस टाइम टू माय गुड लक स्वामी जी वाज इन मूव टू टेल मी समथिंग। ही सेड इट वाज गॉड इन सीक्रेट, इट इज मिस्टिक साधना which we can only to our disciples. So further told me that since he regarded me as his friend, he would tell me something about it. It was indeed the greatness of Swamiji that he bestowed upon me. The honor of being his friend and having the privilege of being treated as that in my heart of hearts, I always respected him and regarded him and honored him as a most venerable Gurudev. Mainne unko bahut mahaan guru mana. And the devotion of Swamiji was reflected in all my actions. So, ye nahi ki mana, maniye bas ho gaya. Mera jo bhi kaam hota tha, usme Swamiji ke pati ne bhi bahut devotion rehti thi. Reflected. Reflect karti thi wo. झलकती थी। स्वामी जी टोल्ड मी कीपिंग इन माइंड द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट एंड डिवोशन यू विल ऑलवेज रिमेन डियर टू मी। जब तक आप प्योर पावन होंगे, श्रद्धावान होंगे, तब तक आप मुझे प्यारे प्रिय होंगे मेरे, जैसे कि अर्जुन कृष्ण को प्रिय थे। द मूड ऑफ स्वामी जी वाज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ लॉर्ड कृष्णा व्हेन ही स्टार्टेड गिविंग गीता ज्ञान टू अर्जुन। Unfolding layers after layers of internal knowledge, and that too very simply in the form of sutras. तब स्वामी ने क्या किया, ऐसे वो ज्ञान देने लगे मुझे जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। एक के बाद एक बातें बताते गए, लेकिन वो सूत्र नहीं थी, फॉर्म ऑफ सूत्रास। हाँ मुल्लू मुझे ये तोड़ में लुक है राम राम ओम नेत्र छप्पन भाई ने कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड विल पावर। फिर बाद में क्या क्या दिया कि जितने भी ये चमत्कार होते हैं, ये ध्यान की शक्ति से और विल पावर इच्छा शक्ति की देर होने से होते हैं। द ऑलमाइटी हैज ब्लेस्ड अस विद ऑल पावर एंड द माइंड भगवान ने हमें क्या दिया है, विल पावर भी दिया और माइंड भी दिया, दैट इज ऑल पावर। इफ वी नो हाउ टू रिफ्लेक्ट आवर माइंड फ्रॉम द फाइव सेंसेस एंड कंसेंट्रेट इट ऑन द मोर रियलाइजेशन, वी कैन एंटर द रियलम ऑफ मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के लिए स्वामी जी ने रामलाल जी को क्या बताया, अगर हमें ये युक्ति आ जाए कि हम डिटेक्ट अवर माइंड फ्रॉम द फाइव सेंसेस, कि हम अपने मन को पांच विषयों से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। फाइव सेंसेस कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अगर हम इन पांचों को से अपने मन को निकाल दें, मन अलग है, ये सेंसेस अलग है, एंड फिर निकालने के बाद हम क्या करें, अपने मन को भगवान इट ओन गोल, भगवान की अनुभूति करने में लगा दें मन को, तब हम मेडिटेशन कर सकते हैं। समझिए, गेम इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर मेडिटेशन, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात आई विच नीड नॉट बी मेंशन हियर, लेकिन मैंने यहाँ पर वो नहीं मेंशन किया। दे कैन ही लीव ओनली टू द कैपेबल डिवोटीज हु हैव द अंडरस्टैंडिंग्स, ये केवल उन्हीं को बताई जाती है जो कि कैपेबल हो उसके बैकग्राउंड में नॉलेज उपयोग है। Declarations. Secret को हम declare नहीं करते। He told me that after the practice of meditation for sufficient time, you will be able to visualize your Ishta Deva on the lotus of your heart. Body there. Anybody else was the same. कई बार बरसों लगते, कई बार युग लगते, पूरा जीवन लगता, तो हम अपने हृदय के जो कमल है वहाँ पर इस देव के दर्शन होते हैं। Then increase your meditation and make it intensive and extensive, you can even start to use deva, और से ज्यादा हम बढ़ जाते हैं ध्यान को लिए, तो हम अपने इस देव से बढ़ते हैं। I continued meditation for many months and years. Progress as Swamiji had indicated. One day I again met Swamiji and asked why and how the meditation becomes all powerful. Preparation process. Swamiji laughed and virtually unveiled the law of miracles. बड़ी कृपा की कि मुझे संत कर्म पे कानून बताए, नियम बताए। He told me, in deep meditation, we are in full communion with the unmerited meditation में भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, and therefore we are one with God, इसलिए हम भगवान ही होते हैं। There is no difference between the individual self and the cosmic self. No difference remains between Jiva and Brahm. So as to say that there is no difference between individual soul and the universal soul. Individual consciousness and the universal consciousness becomes one and the same thing. The veil of Maya is lifted. The bonds of matter are cast aside. The duality is vanished. And there is only one vast, unlimited, the infinite, all the dwelling consciousness. मेडिटेशन का और सीक्रेट ऑफ मेडिटेशन, सीक्रेट ऑफ चमत्कार व्हीकल्स कुछ आपको पढ़ के सुनाए, शायद आपको समझाई गई है, लेकिन कल हम फिर करेंगे, थोड़ा सा फिर आगे बढ़ेंगे इन शब्दों के साथ। गीता माँ